ओम शांति। आप सभी में जो लगन है वो देख करके बाबा भी खुश हो रहा है। बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर के सब आ गए हैं। सभी प्रश्नों का समाधान रोज बाबा की मुरलियों में हम सबको मिलता है। अभी देख रहा था कि बहुत से प्रश्न बहन जी के पास आ रहे हैं। मैं आपको सब प्रश्नों का उत्तर आपके पास है, सिर्फ टेक्निक सिखा देता हूं। टेक्निक आनी चाहिए, विधि आ जाए तो प्रश्नों को हल कर सकते हैं खुद ही। हो सकता है मेरी विधि आपको उतनी न लगे, लेकिन अगर आपके पास वो विधि है तो आप बहुत जल्दी किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने हम सबको एक ही पाठ पढ़ाया है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, कोई नई बात नहीं सुनाई है। और ये ऐसा सुंदर अभ्यास है कि अगर सहज रीति से हम इस देह से डिटैच हो जाते हैं, आत्माभिमानी स्टेज में स्थित होते हैं, तो बाबा के साथ कनेक्शन जुटते ही राइट टचिंग आती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो यथार्थ बुद्धि निर्णय नहीं करती, और निर्णय ठीक न होने के कारण हम उसमें उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, और प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ सेकंड के लिए बुद्धि को स्थिर करके पेपर हर एक के सामने आते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे नया है, चाहे पुराना है, चाहे शारीरिक रूप से किसी के आगे पेपर आए हैं, चाहे पारिवारिक रूप से आए हैं, चाहे सामाजिक रूप से समाज के द्वारा आए हैं, सरकार के द्वारा आए हैं, या प्रकृति के द्वारा, किसी भी प्रकार से परिस्थिति माना दूसरे की तरफ से पर से आई हुई स्थिति है वो, और उस परिस्थिति का समाधान स्वस्थिति में है। जितना हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं उतना उस परिस्थिति का हल स्पष्ट नजर आने लगता है। क्योंकि इस समय जरूरी है बहुत गहरी साइलेंस की अनुभूति। साइलेंस की अनुभूति से तुरंत परख सकते हैं और परखने के साथ साथ निर्णय ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा पेपर मेरे सामने आ गया, इसका उत्तर मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जब साइलेंस में चले जाते हैं, एकदम डीप चले जाते हैं, तो स्पष्ट नजर आने लगता है, ये कर लो, ये न करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बुद्धि निर्णय देती, विवेक अपना बताने लगता। और बाबा की भी टचिंग ऐसे आती है जैसे बस बाबा कह रहा, बच्चे ये कर लो, इतना लाइन क्लीन और क्लियर चाहिए, बहुत स्वच्छ मन चाहिए, जरा भी इधर उधर की मिक्सचरिटी नहीं। श्रीमत हम सबको मिल रही है, और श्रीमत हर चीज की स्पष्ट बाबा ने दी, किसी बात में हमको मुझाया नहीं है। मुरलियां इतनी स्पष्ट बताई हैं, बच्चे ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसे परिवार के बीच में चलना। अब कई बहनें पूछती हैं, मेरी बेटी की शादी में ये करना, मेरी ये करना, मेरा पति मानता है नहीं मानता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, पवित्र नहीं रहने देता, ऐसे ऐसे ही प्रश्न हैं। मैंने देखा जो भी मिले हमसे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका समाधान मैं दूंगा आपको टच नहीं हो सकता, उतना राइट नहीं लगेगा। ये समाधान आपको खुद बाबा से लेना है, बाबा अब मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति आ गई, क्या करूं। अगर आपकी बुद्धि बहुत स्वच्छ है ना, बाबा आपको ऐसे टच करे, बच्ची ये है ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हमने अपनी दादी को देखा, यहाँ पर दादी जी थी ना, आप लोगों के पास तो एक हद की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक परिवार की प्रॉब्लम्स आती हैं, और दादी जी के सामने पूरे विश्व की प्रॉब्लम्स आती थी। इतने सारी बहनें समर्पित हैं, इतने सारा परिवार बड़ा है, कई प्रकार की बातें आती थी, दादी उसमें उलझती नहीं थी, बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत धैर्यता से। बाबा के पास गई, उसको समाधान मिल गई, ये कर लो ये न कर लो। बाबा का कमरा ऐसा दर्पण है, आप बाबा के आगे जाके ऐसे बैठ जाओ, बाबा ऐसे टच करता है, ऐसे जैसे लाइन दिखाता, बच्चे ऐसे कर लो ये कर लो ये कर लो। लेकिन इतना अच्छा बाबा के साथ दिल का प्यार और संबंध चाहिए। मैं आपको केवल 7 बातें बताता हूँ जो आपको इस मार्ग के अंदर बिल्कुल निर्विघ्न चला सकती है, लेकिन अंडरलाइन करके चलना पड़ेगा। 7 बातें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उतर गई तो आपके आगे कोई प्रकार की प्रॉब्लम आएगी आप फट से सामना कर लेंगे। क्योंकि पहली बुद्धि की स्वच्छता के लिए चाहिए, बुद्धि के अंदर कोई भी प्रकार की हलचल ना हो, उसके लिए सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। कई बार हम बीती बातों को बड़ा बड़ा रूप दे करके उसका सोचते सोचते बहुत पहाड़ अपने आगे खड़ा कर देते, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरा ये हुआ। पास्ट जो बीत गया इस जन्म का, अगले जन्म का तो याद नहीं है, इस जन्म का पास्ट कईयों को बहुत परेशान करता है और वो मन को स्थिर एकाग्र होने नहीं देता है। इसलिए सेकेंड में जो हुआ ड्रामा फुल स्टॉप बीत गया, उसको मुझे नहीं सोचना है, बाबा ने कहा बच्चे बिंदी लगा दो, तो बीती को सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास। उसका बार बार चिंतन वर्णन, इधर सुनाया उधर सुनाया, ऐसा हुआ, पुलिस्टा, पहला अभ्यास। और दूसरा, हर बात में साक्षी दृष्टा स्थिति, अपनी भी और दूसरों के भी, जिसके संपर्क संबंध में आओ, इसका बहुत अच्छा पार्ट है। क्यों बजा रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसका वो निश्चित पार्ट है, बजाने दो। साक्षी दृष्टा स्थिति, दृष्टा बन करके उसके पार्ट को देखना। एक है न्यारा और एक है साक्षी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। न्यारा बनना है अपने देहाभिमान से, हमको इससे डिटैच होने का अभ्यास करना है, और साक्षी बनना है पार्ट के अंदर। जब हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, तो जो आत्माएं जैसा पार्ट बजा रही हैं, हर एक के पार्ट को साक्षी बन करके देखना। इंटरफियर नहीं करो हर एक को, क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, ऐसे करता, इसका पार्ट है और वो बजाएगा ही। आप कुछ भी करो, आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपका हिसाब किताब बन जाएगा। और आप अगर न्यारे हो गए, देख रहे हैं साक्षी होकर के, चलो ठीक है इसको बजा लेने दो, बजाएगा अपना, जैसा बजा रहा बजाएगा, मैं उसमें फंस ना जाऊं उसका ध्यान रखो। तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास। और तीसरा, बाबा ने जो श्रीमत की मर्यादाएं बताई हैं, श्रीमत मिली हुई है, अमृत वेले से रात तक बाबा ने हर बच्चे को श्रीमत की बाउंड्री खींच करके दी है, उठने की, खाने की, संघ की, व्यवहार की, सब प्रकार की श्रीमत मुरली के अंदर स्पष्ट है। कभी कभी हम अपने संस्कारों के अनुसार उसमें मनमत ज्यादा ऐड करते हैं, और मनमत के साथ साथ अगर कोई दोस्त होते हैं तो उनकी परमत का प्रभाव, उसके कारण श्रीमत क्या है यथार्थ रीति से उसको हम समझ नहीं पाते। और श्रीमत में अगर मनमत और परमत मिक्स हो रही है तो कुछ न कुछ गलतियां होंगी, कुछ न कुछ भूले होंगी, और उसके कारण हिसाब किताब हमारा बनता जाएगा। इसलिए श्रीमत को यथार्थ रीति से अपने पास नोट करो, मुरली ही श्रीमत है और कोई की श्रीमत नहीं है। साकार बाबा की जितनी मुरलियां चली हैं वो श्रीमत का बहुत स्पष्ट आईना है, ये करो ये नहीं करो, बाबा ने ये किया बच्चों को ऐसे करना चाहिए, सब बताया हुआ बाबा ने। और चौथी बात है, हमारे मार्ग के अंदर जो हमारी मूल धारणा है प्योरिटी की, वो मन वचन कर्म संबंध संपर्क, इसके लिए मैं कुछ भी त्याग करूं, स्थान को छोड़ना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ सहन करना पड़े, इस चौथी बात को जितना जिसने पक्का अंडरलाइन किया है कि ये जरूरी है, ये पिल्लर है, ये फाउंडेशन है, और इसी से बाबा की लाइट माइट आएगी, इसी से टचिंग आएगी, इसी से सब कुछ हो सकता है, एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसी से ही सत्यों की स्थापना होगी। इसलिए इसमें अलबेले नहीं बनो, इसने किया वो करता, ऐसा करता उससे करता, मुझे नहीं देखना, जो करता वो जाने, मुझे नहीं करना है, मैं अपने मन वचन कर्म को स्वच्छ और पवित्र रखूं, जैसा बाबा चाहता ऐसा मैं बनूं। संस्कार हैं, स्वभाव हैं, हिसाब किताब वो सब आएंगे, सबके सामने आते हैं, लेकिन मुझे गोल को प्राप्त करना है। मेरा सामने बाबा ने गोल दिया है कि मुझे अपने आप को इसमें संपन्न और संपूर्ण बनाना है, लक्ष्य रख करके रेस करो इसके लिए। और पांचवी बात है, संगठन के बीच में रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा चाहिए। कोई कैसी भी आत्मा है, हर आत्मा को रिस्पेक्ट की जरूरत है, सम्मान सब चाहते हैं, तो हम सब मान देना सीख जाएं, दिल से सम्मान दें, और सम्मान देंगे तो हमको खुद मिलेगा, मांगते रहेंगे तो कोई नहीं देगा। तो अगर हम सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट मिलेगा स्वतः ही। तो रिगार्ड का रिकॉर्ड, रिगार्ड देने और लेने का रिकॉर्ड जो है वो अच्छे से अच्छा हो। छठी बात है, स्वमान में रह करके अपने स्वमान को कभी लूज नहीं किया। दादी जी ने हमारी देखा होगा आपने, बहुत ऊंचे स्वमान में रही, बाबा ने जिस पोस्ट पर उसको बिठाया उस पोस्ट की स्मृति में रही, सम्मान था, लेकिन सम्मान इतना दिया जो कभी भी अभिमान नहीं आया कि मैं बड़ी हूं, मैं पोस्ट पर हूं, ये मेरा कहना नहीं मानते, ये मेरी सुनते नहीं है, नहीं, सबको सम्मान दिया, जो है जैसे है ठीक है, लेकिन अपने सम्मान को कम नहीं किया। तो सम्मान में रह करके जो सम्मान दिया उसे सबके दिलों को जीत लिया, और दिल जीतने के कारण सब कहते मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, सम्मान में रही सम्मान दिया। और सातवीं बात है, एकदम बाबा ने जिस कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया है मैं निमित्त हूं, कभी भी कर्तापन का अहंकार ना जाए, मैं करता हूं, मैंने किया, बाबा ने कराया, बाबा करण करावनहार है, वो जो करा रहा है मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, निर्माण चित्त स्थिति में रह करके मैं निमित्त बन करके अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करूं। अगर ये सात मंत्र पक्के किए हैं परिवार में भी रहते हुए, कभी भी कोई भी सेवाएं करो, कोई भी सहयोगी बनो, तन से मन से धन से, कभी भी ना आए मैं करता हूं, बाबा आपने करा लिया, मेरा भाग्य बना दिया, बाबा आपने करा लिया, बस ऐसी जो भावनाएं हैं ना अंदर से, बहुत निर्माण बना देती, कभी अहंकार नहीं आता, नहीं तो अहंकार कई बार हमको बहुत दूर लेके चला जाता, संगठन से परिवार से सब से ऐसा लगता है कोई अपना नहीं है, जैसे मैं इतना करता हूं मुझे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सूक्ष्म में अहंकार होता है। लेकिन अगर निमित्त रूप है, किया बाबा जाने, बाबा के खाते में जमा हो गया। मैं हमेशा कहता हूं नेकी करो दरिया में डाल दो। अगर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो कभी भी नेकी का वर्णन चिंतन नहीं करो, मैंने ये इसके साथ किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सात बातें अगर ध्यान पर रखेंगे तो बहुत श्रेष्ठता से बहुत सहजता से इस मंजिल पर चल सकेंगे, और नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फिर कभी खुशी कभी गमी, कभी बहुत मूड अच्छी है, कभी एकदम मूड निराश हो गई, उदास हो गए, और फिर खुशी गायब है, तो योग कैसे लगेगा। योग के दो ही पंख हैं, एक खुशी और दूसरा हल्कापन। अगर खुशी जीवन के अंदर नहीं है, अंदर की प्राप्ति का नशा और खुशी नहीं है, तो योग नहीं लगेगा। और बहुत भारी है, भारी कोई ना कोई बात है संस्कारों की स्वभावों की, आप योग लगाने बैठेंगे मजा ही नहीं आएगा। तो जितना खुशी में रहेंगे अपने आप को खुश रखेंगे, और जितना हल्के रहेंगे उतना बहुत सहज योगी। हमारा ये सहज मार्ग है, सहन करने वाला मार्ग नहीं है, कईयों ने इसको सहन करने वाला बना दिया है, लेकिन देखा जाए तो बाबा ने हमको बहुत नेचुरल लाइफ जीना सिखाया है। हम योग लगाने वाले हैं क्या? योगी जीवन है, ये जीवन योगी है। योग लगाना क्या, एक घंटा दो घंटा? तो योग सिर्फ लगाओ नहीं, लेकिन एकदम जीवन का अनुभव करो, खा रहे हैं पी रहे हैं बात कर रहे हैं चल रहे हैं, ऐसे लगे कि योगी जीवन में जी रहे हैं, ये जीवन ही। जैसे दादियों को हम देखते हैं, आज गुलजार दादी की नेचर देखो आप, नेचुरल योगी है, दृष्टि वृत्ति स्मृति ऐसे लगता है बाबा इनके अंदर बैठा हुआ है, बाबा इनके अंदर है, बाबा करा रहा है। दादियों ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है जो उनको मैं समझता हूँ योग लगाना नहीं पड़ रहा है, वो तो योग लगा हुआ ही है, ही योगी। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे योगी जीवन वाले बन जाएं। सब बातों में जीवन ही ऐसा है जो योग युक्त है, एक बाबा से लिंग से जुटी हुई है, संगम युग पर है ही हमारा एक बाबा दूसरा न कोई। तो एक बाबा के साथ अगर हमारी लिंक जुटी हुई है, तो बाबा जिसका साथी है, जिसके साथ स्वयं भगवान रहता है कंबाइंड है, उसके लिए कोई बात आ सकती है? प्रॉब्लम है ही नहीं, सब प्रॉब्लम हल हो जाती। तो बाबा को अपना कंबाइंड बना करके, साथी बना करके, कमजोर बाबा कहता तुम अच्छा कमजोर है ना बच्चा, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं कौन हूं, श्रेष्ठ हैं, तुम उसके साथ ही बना करके रखो। वो सर्वशक्तिमान है और संगम का ही ये भाग्य है जो हर आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। जो बच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे मेरा निवास स्थान कहाँ है, कई बच्चे पूछते हैं, तो मैं बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता हूँ। जहाँ बच्चों का स्नेह है वहाँ मेरा निवास है। जो बच्चे स्नेह से बाबा कहते हैं मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। पहुँचने में तो उसको टाइम लगता नहीं है, तो इतना दिल का प्यार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सिर्फ मुख से हम न कहें, कभी कभी क्या है, हम बाबा को जब याद करते हैं ना तो उसको जड़ समझ करके जैसे याद कर रहे हैं, जैसे मूर्ति के सामने कोई बैठ जाता है। हम जड़ता को नहीं याद कर रहे, हम तो बहुत चैतन्यता में बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसे रू रिहान कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ साथ रहता है। तो इस संगम पर इस साथ का आनंद लो, साथ रहने का सुख लो। बाबा आप मेरे साथ साथ हो, मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ। तो इसलिए ये अनुभव जो है ना, आत्मा परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप संगम पर, इसकी जो भान है, इसकी जो स्मृति है, इससे बहुत सारी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सबके पास कुछ न कुछ पुराने हिसाब किताब हैं, पुराने शरीरों के हिसाब किताब हैं, संबंधों में इतने समय हमने देहधारियों के साथ पार्ट प्ले किया है, तो कुछ न कुछ किसी किसी के सामने रूप में विघन आते ही हैं। एक बार की हंसी की बात हमने सुनाई होगी, सुना होगा आप लोगों ने। एक बहन आई, बच्ची बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत उसकी बड़ी बहन उसको तंग करती थी। बाबा को बहुत सुनाने लगी, बाबा मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाबा बड़े प्यार से उसको देख करके मुस्कुराता रहा, बच्ची और क्या होता है, बच्ची और क्या होता है, बच्ची और क्या होता है। उसके सब दिल हल्की करके पूछ लिया। फिर बोलता, बच्ची एक बात कहूं? तो कहने, बाबा बताओ क्या करूं मैं। बच्ची तुम पिछले जन्म में ना उसकी सासू थी, तुमने भी बहुत उसको तंग किया था, हंसा दिया उसको, तुमने भी बहुत किया था, तो जरूर इस समय कुछ तो हिसाब किताब होगा ना, इसलिए तो तुम्हारे उसी पास गई हो। इसलिए बहुत हल्के रीति से हिसाब किताब होगा, पूरा हो रहा, हल्के हो जाओ। तो बाबा तो इतना रमणीकता से ज्ञान देता है, इतना समझ देता है कि अगर मेरे आगे कोई पेपर आया है, अगर कोई मुझे बहुत तंग कर रहा है, कोई सता रहा है, कोई मार भी रहा है, तो कुछ तो मैंने भी किया होगा ना, तब तो कर रहा है। पिछले जन्मों में ऐसा कुछ उसके साथ मेरा हुआ होगा, तो अभी हिसाब कुछ तो हो रहा है, क्यों दिल छोटी करूं। अब बाबा मिला है, उसका साथ हाथ पकड़ करके रखूं ताकि ये सब पूरा हो जाए। तो कोई भी छोटी बात को बड़ा रूप नहीं दो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही होता है, इसके साथ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो दूसरों को भेंट करके अपने को दुखी कर लेते हैं। तो कभी भी किसी के साथ भेंट नहीं करो, मेरा पार्ट है, मेरा हिसाब किताब जो था चुकतू करना है खुशी खुशी से, और बाबा का साथ और हाथ लेकर के श्रीमत की मर्यादा के अंदर रह करके जो कुछ सहन करना पड़े कर लेंगे, पार हो जाएगा। आप देखो थोड़े समय के बाद इन सब बातों का उत्तर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अभी तो बाबा से ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो लगे कि बाबा ऐसे बच्चे जैसे गाइड कर रहे हैं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे रहो, और बहुतों को गाइड कर रहा है, बहुतों को अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अभी बहुत बाबा का पार्ट जो है ना, जैसे उस समय शुरू शुरू में साक्षात्कार का रूप में चला, ऐसे साक्षात अनुभव बाबा करा रहा है बच्चों को। साथ हूं मैं बच्चे तेरे साथ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये अनुभव अभी साकार में अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ आप देख रहे हो, इतना विस्तार देख रहे हो। आज कितने बड़े बड़े VIP जा रहे हैं, पहले पहले जब हम शुरू में थे ना, कोई एक VIP आता था तो दादी हम लोगों का स्पेशल क्लास लेती थी, यहाँ शांति से रखना, यहाँ सफाई रखना, यहाँ ऐसे करना, यहाँ कोई बोलना नहीं, चुप रहना, बहुत बहुत डायरेक्शन मिलते थे हम लोगों को। एक VIP कोई बड़ा आता था, और आज हजारों VIP आ रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं किसी को, और कोई गाइड नहीं कर रहा है, और बाबा इतने अच्छे अच्छे अनुभव उनको कराता है। अभी डॉक्टर्स का मैं कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, लास्ट में अनुभव सुने, नए नए बाबा के बच्चे हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन आए हैं यहाँ पर। एक इधर से हिमाचल से वाइस चांसलर आया था, उसने क्या अच्छा अनुभव सुनाया। एक और डॉक्टर था, वो कहता है मुझे बाबा ने आज 2 बजे उठा दिया, मुझे कहता है बच्चे चलो तैयार हो जाओ, योग करो चल के। नहीं, ऐसे ऐसे नए नए बच्चे हैं, तो बाबा करण करावन हार चल करा रहा है। सिर्फ हम उसको साथ का अनुभव करें, अपने साथ रखें बस, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये हिसाब किताब चुकतू होने का अंतिम समय है। अंतिम समय में सब प्रकार के हिसाब किताब हरेक के आगे आने वाले स्पष्ट दिखाई देंगे। ये हिसाब किताब आ गया, बहुत अच्छा पुरुषार्थ था और अचानक ही रुकावट आ गई, आई है, पार हो जाएगी, मैं घबरा ना जाऊं, सेकेंड में छोटी दिल नहीं करो, पार हो जाएगी, बाबा साथ है, हो जाएगा, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। और बड़ी बात को एकदम ऐसे लगे है ही नहीं कुछ, बड़ी बात आ गई लेकिन है ही नहीं कुछ, पार हो जाएगी, भगवान हमारा साथ है। तो ऐसी स्थिति बना करके बहुत नंबर वन स्टेज बन जाए, श्रेष्ठ स्थिति बन जाए, अब इसकी जरूरत है। तो इस भट्टी के अंदर ऐसा कुछ करके, ऐसी कोई कमाल करो जो आपको लगे कि सचमुच मैं बाबा के घर में गया, बाबा के घर में गई, इतनी लाइट स्थिति बन गई, जैसे मेरे सब बोझ बाबा ने हर लिए, कुछ नहीं मेरे ऊपर, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस। ये प्रैक्टिकल का अनुभव अभी यहाँ करके उसको प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में उतारना। उन लोगों को ऐसे लगता है बाबा ऐसे नचा रहा है, ऐसे करा रहा है, सब अपने आप करा रहा है, हम सिर्फ हाँ जी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं और कर रहे हैं। हमको कहाँ से आता था ये सब, कहाँ से बुद्धि थी, कहाँ बाबा पढ़ाई थी, कौन सी उनके लोगों की डिग्री थी, बाबा कितने बड़े बड़े काम करा रहा है, अपने आप करा रहा है। जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कभी जाता हूँ, जब लेक्चर देता हूँ, वाइस चांसलर ये बड़े बड़े बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ बाबा धन्य हो आप, मुझे यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं है, कॉलेज दिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, और इनके आगे लेक्चर करा रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, नहीं बाबा करण करावन आ रहे ना, कहाँ से मैं लेकर के आया पढ़ाई, कहाँ से ज्ञान, लेकिन बाबा ने इतना ज्ञान दिया है। कोई पूछता है कितना पढ़ रहे हो, हमने कहा पढ़ाई पूरी नहीं हुई अभी तक, पढ़ ही रहा हूँ ना 42 साल से, पहले पढ़ा हो तो लौकिक पढ़ाई की, लेकिन 42 वर्षों से पढ़ा ही रहा है भगवान हमको, और भगवान खुद टीचर बन के पढ़ा रहा है, इससे बड़ी पढ़ाई और क्या होगी। और डिग्री तुम्हारी निश्चित है, कौन सी डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जब तक यह डिग्री हमने नहीं ली है तब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और कोई डिग्री हमको चाहिए नहीं, ठीक है। तो बाबा जिसका साथी है, जिसको पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, अरे उसको क्या डरने की बात, आएंगे पेपर खत्म हो जाए, पेपर की परवाह नहीं करनी है। डोंट, दादी क्या कहती, जानकी दादी, डोंट थिंक प्लीज, सोचना बंद कर दो, डोंट थिंक प्लीज। ये हमेशा, कल विदेशियों के साथ बैठी थी, मैं साथ में बैठा था, तो एक बहने बहुत सोचने की आदत थी, अंग्रेज थी, तो कहते डोंट थिंक प्लीज, नहीं सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो दादियों ने अपनी ऐसी अच्छी स्थिति बनाई है ना, कैसे बनाई, ज्ञान से बनाई, समझ से बनाई। तो हम लोगों की जो सोचने की अधिक आदत है ना, वो हमको कई बीमारियों को जन्म दे रही है। बहुत सोचने वाले के पास बहुत बीमारियां आ रही हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण है अधिक सोचना। और बाबा के बन गए, बाबा पर छोड़ दिया, सब बाबा सोच ले लेता, सब प्रकार की बीमारियों का हल मिल जाता, ठीक है। तो डोंट थिंक, ज्यादा नहीं सोचो, माताएं बहुत सोचती हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाकी अभी पेपर तुम प्रश्न क्या है, आधा घंटे के अंदर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
शांति, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आ गए, लेकिन मेरे पास पहले से प्रश्न आए तो पढ़ना थोड़ा जरूरी है। दो तीन प्रश्न हैं जो रिलेशन से संबंधित हैं, तो उनको एक साथ पढ़ लो।
एक साथ।
किसी ने पूछा है कि फैमिली लाइफ में मैं साइलेंस मेंटेन करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं अपसेट हूँ या क्रोधित हूँ। अपसेट हूँ या क्रोधित हूँ।
ऐसा है कि कई बार हमारी साइलेंस चेहरे पर खुशकी ले आती है। साइलेंस में रमणीकता है हमारी, ऐसी साइलेंस हमारी नहीं है जो हम सुन में या गुमसुम हो जाएं। साइलेंस के साथ प्यार है, बाबा के साथ प्यार है, लव है, तो वो प्यार के चिन्ह भी चेहरे पर होने चाहिए। कई बार साइलेंस सूखेपन का अनुभव कराती है, लोग डरने लगते, पता नहीं क्या हो गया इसको, डिप्रेशन में तो नहीं है, ये बोल नहीं रही है, तो चुप हो गई है। तो वो स्थिति हमारी साइलेंस की नहीं होनी चाहिए। हमारी साइलेंस है स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस बाबा ने मना की है, डेड साइलेंस है ही नहीं, आत्मा कभी डेड होती नहीं है। इसलिए बहुत मीठे स्वीट प्यार के संकल्प हैं, और वो संकल्प भगवान के मिलने के, वो साइलेंस है हमारी। तो इसलिए आप कार्य क्षेत्र में कभी ऐसी साइलेंस का अनुभव नहीं करो या ऐसा अनुभव नहीं कराओ जो लोगों को लगे पता नहीं इसका मूड तो नहीं खराब है। चेहरे पर कभी उदासी नहीं आना चाहिए, प्यार से बोल दिया, ऐसा थोड़ी चुप है जो हमारा मुख बंद है, साइलेंस से प्यार से मुस्कुराते हुए मीठे बोल में अगर बोल दोगे कुछ बात कर लोगे तो लगेगा नहीं ये तो अपने मस्ती में है। मस्ती का अनुभव होना चाहिए, साइलेंस का नहीं, चेहरे पर।
दूसरा प्रश्न है कि बहुत किसी नए ने पूछा है कि उन्होंने तो नॉनवेज आदि छोड़ दिया है पर उनका लड़का जो है उसको दिल होती है, वैसे वो सहयोग देता है लेकिन इनको गिल्ट फील होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए नहीं बना के दे रही हूँ, पड़ोसी से जब सुगंध आती है उसकी तो उसको दिल होती है, तो क्या करें?
देखो ऐसा है कि अगर आप पक्के होकर के रहेंगे तो बच्चे सीधे सीधे समझने लगेंगे, और अगर बहुत दिल होती है तो बाहर जाके भले खाएं, आप अपने घर में बनाने की आदत नहीं डालना। मोह के कारण कई माताएं अपने घर में ऐसा करने लगती हैं, हमारे घर में नहीं बनेगा, तेरे को अगर खाना ये बहुत है तो भले बाजार से खा के, लेकिन हमारे घर में ये चीज नहीं बनेगी, क्यों अभी हम शाकाहारी हैं, सात्विक हैं, परमात्मा की याद वाले, हमारे बर्तनों में ऐसी चीजें नहीं बननी चाहिए। आप पक्के रहो, बच्चे सहयोग देंगे, और अगर बहुत कट्टर हैं, कोई बहुत संस्कार ऐसे कड़े हैं, भले खाएं जाकर के बाहर। देखो समझा सकते हैं तो आज बंधन बच्चों पर नहीं डाला जा सकता है, बंधन डालेंगे तो और डिस्टर्ब होंगे, वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए जो उनका हिस्सा है वो भले खर्च करें, उनका भी तो हिस्सा है ना, कुछ धन उनका भी तो है, कुछ हिस्सा लगता है, आपके घर में आए हैं, जन्म लिया है तो उनका भी हिस्सा है, इसलिए अपने हिस्से को भले कहीं भी लगाएं, आप गाइड करो। माँ बाप का हमेशा फर्ज है, जैसे हमारे बाबा क्या कहते हैं हमको, बच्चे मैं न दुख देता हूँ न मैं सुख देता हूँ, फिर भी सुखदाता कहलाता हूँ, क्यों? मैं तुमको सुख का रास्ता बताता हूँ, तुम चलोगे तो सुखी होगे, मैं दूंगा नहीं किसी को, तुम चलोगे तो सुखी हो जाओ। तो ऐसे ही माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, चलेंगे तो सुखी होंगे, नहीं चलेंगे तो उनका भाग्य, वो जाने, आपका कार्य जो है वो करो, बाकी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाओ कि इनको करना ही है, ये मेरा अधिकार है इनके ऊपर, मैंने जन्म दिया है, मैंने बड़ा किया है, तो उसका बड़ा नुकसान होता है, उसकी बहुत कहानियां मेरे पास, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना, जबरदस्ती माँ बाप अपने बच्चों को बंधन में न बांधने तो अच्छा है, उनका पार्ट है, उनको सही रास्ता दिखाओ, बड़ा हुए हैं, अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो जो करेंगे उनका कर्म जाने, उनके हिसाब किताब जाने।
एक हमारी माता बहुत कश्मकश में है कि उनको सेंटर पर रहना है, और उनके निमित्त उनको सेंटर पर रहने के लिए बोलते भी हैं, लेकिन उनका ग्रैंडसन जो है छोटा है, पोता उनका, और उनके बहू, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो आगे चल के बहू मुझे टॉन्ट मारेगी, मारी नहीं है अभी तक, मारेगी, तो क्या किया जाए?
ये कई बार हमारे संकल्प हमको बंधन में बांधते हैं, अगर निर्बंधन है, वो आत्मा समझती है हम बाबा की सेवा में लग सकते हैं, तो फिर लोक लाज टोंट इनकी परवाह तो करनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए उसको, झाटकू बनो, झाटकू अपने आप जो होगा अच्छा होगा, अगर आपको सेवा का चांस मिल रहा है, आप निर्बंधन है, फिर आपको मन का ये बंधन खींच रहा है, ये पोतरा है, ये नाती है, ये फलाना है, ये संबंधों का बंधन आपको बांध रहा है, इसको आप चेक करो और काट दो, जितना जल्दी काटोगे उतनी अच्छी सेवा कर सकोगे, इसलिए कभी भी परवाह नहीं करनी, ये कहेंगे टोंट मारेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो आप अपना बंधन क्रिएट कर रहे हो, है कुछ नहीं, और होगा भी तो क्या करेंगे हमारा, जो बाबा इतनी महिमा कर रहा है, इतनी प्रशंसा कर रहा है, अगर चांस है किसी को, निर्बंधन है कि सेवा कर सकती है, तो जंप लगाना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए।
उनको शायद ऐसा लगता है कि बाद में वो ध्यान न दे हमारा,
लेकिन अगर आप बाबा की सेवा में अच्छी हो, आपके हर प्रकार की आपको धारणाएं अच्छी हैं, तो सेंटर आपकी संभाल करेगा ना, आप उनके आधार पर क्यों रहेंगे फिर, अगर सेवा सेंटर पर रहकर करना है तो सेंटर आपको संभालेगा फिर, लेकिन अगर आप उनके पास जाना चाहते हो तो उनके आगे झुकना पड़ेगा। मैंने सवेरे भी कहा था, जहां कोई भी किसी के साथ कामनाएं होती हैं वहां सामना नहीं किया जा सकता, अगर कामनाएं हैं कि वो हमारे को संभालेगी, आगे चल के हमको उसके आगे झुकना पड़ेगा, तो आप फिर निर्बंधन होकर के जंप नहीं दे सकते, फिर तो आपको मानना पड़ेगा उसका।
इस प्रश्न का जवाब शायद आपने दे दिया है कि बहुत समय बाबा से कनेक्शन लगता है पर कभी कोई छोटी छोटी बातों से टूट जाता है, तो उसका कारण क्या है?
कारण तो व्यक्ति का ही चिंतन है, इधर उधर की बातों पर ज्यादा हम सोचते हैं इसलिए नहीं लग रहा कनेक्शन टूट रहा है, इसलिए फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, ज्ञान को यूज करो और ज्ञान का चिंतन बढ़ाओ। योग टूटने का कारण है अच्छा चिंतन नहीं है। जिसके संकल्प अच्छे चिंतन में रहते हैं ना, अच्छी अच्छी बाबा की बातों का चिंतन, प्राप्तियों का चिंतन, अनुभवों का चिंतन, उनका योग बहुत सहज लग जाता। लेकिन हम उनकी वही बातों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बैठते हैं थोड़ी देर योग लगता है फिर नीचे आ जाए वही बातें खींच के ले जाते। इसलिए चिंतन की धारा को चेंज कर लो तो योग सहज हो जाए।
और इसी में उन्होंने पूछा है कि बड़ों से वरदान मांगना क्या ये बड़ों का डिसरिस्पेक्ट है?
नहीं, बड़ों से वरदान मांगने की क्या जरूरत है, आप आज्ञाकारी सपूत बनोगे तो बाबा भी वरदान देगा, बड़े भी वरदान तो बड़े देते नहीं है, वो तो दुआएं देंगे, वरदान तो एक बाबा ही देता है, सतगुरु ही देता है, तो हम किसी से मांगें क्यों, मांगने की क्या जरूरत है। जो जितना आज्ञाकारी है, सपूत है, श्रीमत पर चल रहा है, उसको गुप्त दुआएं और वरदान बाप दादा की तरफ से मिलते रहते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है।
अगला प्रश्न है कि शरीर को अगर कोई ऐसा कड़ा पेपर आए जिससे पार होना असंभव दिखाई दे, मेडिकल साइंस जवाब दे दे और उस व्यक्ति का किसी भी बात में मन न लगे ज्ञान योग में भी, तो आप उस व्यक्ति को क्या आश्वासन देंगे?
आजकल अगर मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भी अगर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे, तो अगर उसकी भावना और विश्वास है तो मैं उसको राय देता हूँ, कर सकते हैं। डॉक्टर जवाब दे दिया है, आपके पास भावना है कि भगवान हमारा है, सुप्रीम सर्जन हमारे साथ है, तो उस पर बहुत निश्चय रख करके, भावना रख करके, अगर आप पानी भी ऐसे योगयुक्त होकर के पियेंगे, उसको योग में सकास दे करके ऐसे ग्रहण करेंगे तो दवाई का काम करेगा। कई बीमारियां डॉक्टर्स को पता नहीं चलती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हमको अंदर अंदर बहुत परेशान कर रही है, शरीर को लगता है, तो आप कुछ प्रयोग अपने शक्तियों का, योग का स्पेशल करके पानी के ऊपर करो, जो चीज आप ले रहे हो उस पर प्रयोग करके, योग करके फिर उसको स्वीकार करो, तो वही आपके लिए दवाई बन जाएगी और देखेंगे वो धीरे धीरे बीमारी ठीक होती जा रही है, प्रयोग करके देखना। क्योंकि हमारे शुद्ध वाइब्रेशन चार्ज कर देते हैं कोई भी चीज को सामने दृष्टि से, लेकिन बहुत बहुत शुद्धता और एकाग्रता भावना के साथ कि ये दवाई है जो मैं लेने जा रही हूँ, वो दवाई नहीं लूंगी, लेकिन पानी को भी हम दवाई बना के लेंगे तो कई बीमारियां ऐसी इससे भी ठीक हो जाती है, हमारे शुभ भावनाओं की सकास है।
बहुत अच्छा जवाब, मेरे ख्याल से बहुतों को इससे लाभ मिलेगा।
दादी के समय पता क्या हुआ था, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ है, तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ये बात दादी के लिए कही थी कि दादी जब अमृत वेले उठती है तो वो पानी चांदी के गिलास में शाम के समय बाबा के कमरे में रख दो और पानी सब योग करें, नंबर वार योग चलता रहता था, और सब योग करेंगे तो उस पानी के अंदर जो सकास जाएगी, वाइब्रेशन जाएंगे, बाबा के कमरे की जो शक्तियां हैं उसमें जाएंगी, और दादी जब सवेरे तैयार होती है उस समय ये पानी पिलाना तो दादी को दवाई का काम करेगा। अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, माना जिसमें हम लोग यूज करते हैं जनरल ग्लास न हो, इसलिए चांदी का गिलास थोड़ा अच्छा रहता है, उसको अलग से रख देते हैं, तो उसमें पानी रख दिया बाबा के कमरे में शाम को रखा, मेडिटेशन किया, फिर तैयार होकर के स्नान पानी करके दवाई की रीति से योग में पी लिया तो दवाई का काम कर लेता है, ऐसा प्रयोग बाबा ने खुद कराया इसलिए बता रहा हूँ।
मनसा सेवा में सभी को बहुत इंटरेस्ट है, तो किसी ने पूछा है उसकी विधि समझाओ, और दूसरे किसी ने पूछा है कि बड़े बुजुर्ग जिनको उनके बहु बेटे पैसा खत्म होते ही तकलीफ देना शुरू करते हैं, तो उन आत्माओं के कौन सी मनसा सेवा करनी चाहिए, उन आत्माओं को कि उन आत्माओं के लिए,
बूढ़ी आत्माओं को जिनको जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे उनको तंग करते हैं, ऐसे ना आजकल कलयुग में तो ये बहुत चल रहा है। मनसा सेवा के लिए सबके पास शुभ भावनाओं का स्टॉक चाहिए, अगर शक्ति है, कोई भी सेवा के लिए शक्ति चाहिए, तो अगर हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों की शुभ भावनाओं की शक्ति है, सबका भला हो, कोई से कोई चीज का स्वार्थ नहीं, पर्सनल मनसा सेवा नहीं करो, हद की नहीं, आप जितनी पावरफुल स्थिति में रहेंगे, शुभ भावना से संपन्न स्थिति में रहेंगे, आपके जो वाइब्रेशन है वही मनसा सेवा करेंगे। लेकिन हमको बहुत बहुत शुभ भावनाओं से भरपूर रहना पड़ेगा। कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं, ये ठीक हो जाएगा तो ये मदद करेगा, ये ऐसा हो जाएगा तो, क्यों कई हदें रख करके हम उनको सकास देना चाहते हैं, वो मनसा सेवा समझते हैं। लेकिन अगर हम पावरफुल स्टेज में रह करके सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब बाबा से अपना मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लें, बहुत बेहद की दृष्टि रखते हैं, तो हमारी मनसा चारों तरफ फैलती है और उससे कई आत्माओं को मदद मिलती है। ये बेहद की दृष्टिकोण है। बाकी जो बुजुर्ग आत्माएं हैं, वास्तव में हम अगर कोई सहयोग दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ठुकराए जाती हैं ऐसी आत्माएं और उनको बहुत पश्चाताप होता है। ऐसे समय पर उनको ज्ञान योग की लाठी चाहिए, सहारा। अगर कोई ऐसे वानप्रस्थ आश्रम है, सहयोग दे सकते हो तो उनको मदद करके पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, और अधिक से अधिक उनको ज्ञान योग की शक्ति का दान करो, और ज्ञान से उनको समझा करके, उनके पार्ट को समझा करके, उनको एक बल चाहिए, आत्मा को बल चाहिए। अगर वो आत्माएं बलवान हो जाए ना, बुजुर्ग होकर के, कोई की परवाह नहीं है, चलो हमको पूछेगा भगवान, कोई भूखे नहीं मरते हैं, मिलता है सब साधन है, लेकिन बच्चों में मोह होने के कारण अधिक दुखी होते हैं कि हमने इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना नौकरी दिया, फिर हमको ये पूछते नहीं है, बहू आ गई और फिर झगड़े शुरू कर दिया, वो अलग हो गया। ऐसे समय पर बुजुर्गों को बड़ा दुख महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। सहयोग कोई दे सकते हो, आपको बहुत रहमदिली है तो सहयोग दो, और ज्ञान योग की शक्ति हो सके तो ज्ञान दे करके, समझ दे करके, उनको सहारा दे करके कोई न कोई अच्छा रास्ता दिखा दो जिससे वो निश्चिंत जीवन जी सके। इसलिए बाबा कहता बच्चे वानप्रस्थियों के पास जाकर के खूब सेवा करो, उनको संदेश दो।
किसी भाई ने प्रश्न भाई ने ही पूछा होगा क्योंकि पैसे से संबंधित है कि धन अगर किसी को दिया है और वो वापस नहीं मिलता है तो ये क्या हमारा कार्मिक अकाउंट है या और कुछ है, और ऐसे समय पर कैसे डील किया जाए?
ऐसा है कि एक तो देने के समय बहुत समझ चाहिए। कई बार देने के समय हम लोग समझ नहीं पाते व्यक्ति सामने वाला रिटर्न करने वाला या नहीं, बहुत धोखा है आजकल की दुनिया ही, धोखेबाज भ्रष्टाचार चला है ना, अति में जा रहा है। इसलिए बाबा तो मना करता है बच्चे जितना हो सकता है धन के लेन देन बंद करो, नहीं करो आपस में, करो ही नहीं, ये धंधा ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई का धन ऐसा लग रहा है जा रहा है, किसी को दे रहे हो तो विश्वास पात्र है या नहीं पहले देख करके दो, और अगर कोई कारण ऐसा बन गया जिससे वो आपका धन एकदम खत्म हो गया, मिलेगा ही नहीं रिटर्न, तो फिर हिसाब किताब कोई पूरा हो गया, कर्ज पूरा हो गया, ज्यादा चिंता उसका करके अपने आप को टेंशन में नहीं लो, कोई हिसाब किताब था पूरा हो गया। अपने आप को समझाने की यहाँ जरूरत है, केस किस्से में क्या है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती, कहीं कोई बातें निश्चित नहीं होती, किस पर केस करोगे, या तो इतना पक्का हो, और उसके लिए फिर इनकम टैक्स का डर, कई प्रकार के डर होते हैं, तो वो भी लिखा पढ़ी भी नहीं होती कईयों के पास, फिर क्या करोगे आप? उस समय केवल अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ता है क्योंकि मेरी गलती से गया, कोई हिसाब किताब हो गया, पूरा हो गया। अपने आप को शांत रखो, मन को इतना डिस्टर्ब नहीं कर दो, पैसा चला गया तो मेरा सारा जीवन ही चला गया, ऐसा तो नहीं है, गया है, कोई हिसाब किताब था, चला गया, फिर आ जाएगा। नहीं देते हैं तो ये लगता ना मैंने दिया इनको, हाँ अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए यही सोचना पड़े ना, मेरा नहीं था, जिसका था उसका चला गया।
अगली बार पैसे की डील कैसे करें?
ना करें तो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ना। जितना हो सकता है आजकल या तो बहुत विश्वास पात्र हो, बहुत किसी पर पता है विश्वास नहीं रख सकते, पैसे का क्या कर देगा कभी कुछ समझ नहीं आता, ज्ञानी आत्माएं भी कईयों को बहुत धोखा देके चले जाते हैं। इसलिए कभी भी भोलेपन में आकर के ज्ञानी है, समझदार है, मांग रहा है बेचारे को, जरूरत है, फिर रहम आता है, तो फिर ये इस भावना से दो कि मैं दिया तो दिया, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो इसका, ऐसा अगर करते हो तो भले धन के लेन देन करो। बाकी ऐसा नहीं बहन जी हमको, हमने दिया तो बहन जी हमको मदद करें, टीचर हमको मदद करें, उनसे सहयोग मांगते हैं फिर उनसे कहलाते हैं, बहनों के इसमें बीच में धंधे में क्यों डालते हो, बहने क्या करेंगे, आप समझ से लेन देन करो ना। अगर आप देना चाहते हो तो अपने फेथ पर दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो आप ना कर दो। मतलब वो आपको समझ चाहिए। फिर बहनों को बीच में डालना, बड़ों को डालना, दादियों को कहना, कई ऐसे लिखते हैं मेरा इतना पैसा इसने ले लिया, देने के समय नहीं पूछा, अभी पूछ रहे हो तुम, तो कहां से जवाब हम देंगे इसका। दादियों के पास ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं हमारे पास।
जहां तक हो सके ब्राह्मणों से लेन देन नहीं करनी चाहिए,
नहीं करनी चाहिए पैसे, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। तो दिल टूटती ज्ञान से, ज्ञान ऐसा ऐसा है, देसी समझ है। बहने भी नहीं कुछ कहती हैं, क्यों कहेंगी बहने, आपका हिसाब किताब है, आप जानो।
अगला प्रश्न है, हर कर्म का आनंद लेने के लिए किस बात पर अटेंशन रखना चाहिए।
कर्म जो कर रहे हैं ना, कर्तापन के स्मृति से अगर हम किया और समर्पित कर दिया तो आनंद ले सकते हैं। अगर कर्तापन का नशा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा किया, तो आनंद नहीं आएगा, उसमें फंस जाएंगे। इसलिए कर्म बंधन न बने, ध्यान रखो, कर्म किया, बाबा को समर्पित कर दिया। संगम युग ही है जिसमें बाबा स्वीकार कर लेता है, बाबा आपने करा लिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो कर्तापन का नशा नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा और बहुत मौज का अनुभव आप करेंगे।
अगला प्रश्न है कि कई बार लगता है कि ज्ञान और योग से हमारे पुराने संस्कार भस्म हो गए, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया जाए।
अभी आप करेंगे ज्वालामुखी योग, भस्म कर लेना। जब तक शक्तिशाली याद नहीं है तब तक संस्कार जलते नहीं है, दब जाते हैं, परतों के नीचे दब जाते हैं। अच्छे संग से, अच्छी पढ़ाई से, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो नेचुरल है, वो संस्कार दब जाते हैं, लेकिन जलता नहीं है। और जब तक बीज को अग्नि के अंदर जलाया नहीं जाता तब तक कभी भी उसको पानी मिट्टी का सहयोग मिलते ही अंकुरित हो जाता है। इसलिए संस्कारों का बीज जो कड़ा है उसको बहुत पावरफुल याद की अग्नि चाहिए, और वो याद बहुत सहज नहीं है, ऐसे नहीं चलते फिरते हो जाती है, बहुत एकाग्रता वाली, स्थिरता वाली, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे। जैसे पानी है ना, इकट्ठा करते हैं पहले, एकाग्र करते हैं, फिर स्थिर हो जाता है तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, और स्थिर होने के बाद वो स्वच्छ हो जाता है, और जब स्वच्छ होता है तो उसमें स्पष्टता आ जाती है। कितनी भी चीज गहरी हो ऐसे दिखाई देती है, बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे ही जब योग के अंदर एकाग्रता का अभ्यास अच्छा होता है, बिल्कुल साइलेंस में हम चले जाते हैं, तो स्पष्ट पता चलता है ये मेरा संस्कार है। संस्कारों को चेंज करने के लिए चार बातें बताता हूं। पहली, समझ बाबा दे रहा है ये संस्कार गलत है। कई बार हमको गलत संस्कार के पता ही नहीं चलता, मेरा ही गलत है, चल रहे हैं सबके हैं, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबको देखते हैं हमारा भी चल रहा है। पहले समझ चाहिए, इसलिए समझ मुरली से मिल रही है। फिर योग में रियलाइजेशन होती है, महसूसता, ये नहीं होना चाहिए, इसको मुझे समाप्त करना है। और जब महसूस होता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद शुरू होती है दृढ़ता की तपस्या। जब तपस्या करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, फेस करना कई बातों का पड़ता है। ये चार बातें, समझ, रियलाइजेशन, तपस्या, और फिर सब प्रकार की शक्तियां, समय से सहन करने की, सामना करने की, समाने की, तब दिखाई देता मेरा परिवर्तन हुआ। तो कोई भी संस्कार है उसके लिए इन चारों बातों की जरूरत है, तब वो चेंज होता है। नहीं तो कई प्रकार क्रोध का संस्कार है, काम का संस्कार है, बहुत सूक्ष्म है और अंदर अंदर हैं, ऊपर ऊपर से हम दिखाते बड़े योगी हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई हमारे अंदर विकार नहीं, लेकिन जब ऐसा चांस मिलता है तो उभर आता, निकल आता बाहर। इसलिए तपस्या के रूप में, अग्नि के रूप में इसको रियलाइज करके समाप्त करना है, तभी परिवर्तन हो। समझ, पहली समझ, दूसरी महसूसता, तीसरी तपस्या, और चौथी शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, शक्ति की जरूरत है। तपस्या करने लगे, आपको मिसाल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे सहज। जैसे वाल्मीकि, परिवर्तन कैसे हुआ, पहले साधु संतों ने उसको समझ दी कि किसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। जब समझ आ गई कि अरे इसका हिस्सा कोई नहीं लेगा, मेरे को ही भोगना पड़ेगा, तो उसको महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। महसूस हुआ उसके बाद वो बैठ गया, क्या करूं, तपस्या करो। तब तपस्या करने लगा तो बहुत सारा दुख महसूस हुआ, तकलीफ हुई उसको, लेकिन ऐसी तपस्या की तो कहते उसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं दीमक के घर बन गए, ऐसे बाल जैसे बन गए। इतना सहन किया उसने, और सहन करने के बाद उसको सिद्धि मिल गई, वो एक ऋषि बन गया, संत बन गया, डाकू से संत बन गया। परिवर्तन कैसे आया? इन्हीं चार बातों के आधार से उसके अंदर आया, तब वो संत कहलाया, तब उसने रामायण लिख दिया। तो ऐसे परिवर्तन जिसका भी देखेंगे इतिहास, पहले समझ, फिर महसूसता, फिर तपस्या, और तपस्या के बाद बहुत कुछ उसने सहन किया, तब परिवर्तन हुआ। तो हम भी अगर अपने संस्कारों को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ही चारों बातों को ध्यान पर रखें।
एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है, फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा गया है कि बाबा इज अ डोर एंड वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर वी शुड मेक अ फुल स्टॉप। बाबा दरवाजा है, हम साधन है, तो हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए।
तो बहुत अच्छी बात है
पत्रा भाई, क्वेश्चन नहीं है ना?
क्वेश्चन नहीं है,
यस।
साढ़े पांच का रिकॉर्ड,
दो मिनट बताना,
रिकॉर्ड के बाद बता, दो मिनट।
काफी क्वेश्चंस माइंड में आया था, کیونکہ میں نے ایکچولی وپشنا بھی کی تھی, تو وپشنا کا میڈیٹیشن میں کرتا ہوں, اور جو اٹریکشن مجھے یہاں پہ برہما کماری میں, تو میڈیٹیشن کا, تو میں جب میڈیٹیشن کرتا ہوں تو کافی وچاروں آتا ہے, تو کافی وچاروں آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچتا ہے کہ بھائی کیوں ایسا وچار آتا ہے, کیونکہ میں ابھی بھی بزنس میں ہوں اور بزنس کا ابھی چینجز بزنس میں بھی ہونے لگا ہے. میں پہلے میرا سینئر جو پارٹنر تھا اس کے ساتھ ہم جو دھندا کرتا بزنس کرتا تھا ٹوٹلی آن اسپرچل پاتھ, اور ہمارا ویلیو سسٹم وغیرہ وہ حساب سے چلتا تھا. ابھی چینجز ہوتا ہے تو اس میں نیچرلی, میں نے ہریش بھائی ساتھ بھی بات کی کہ نیچرل چینجز ہونے والا ہے, تو انیک پرکار کا پریشر آتا ہے, بزنس کا بھی پریشر آتا ہے. ابھی بچہ جانے والا ہے, He's got a appointment in Bangalore, تو یہاں جانے والا ہے, تو اس کا بھی پریشرز ہے, اور اس کے بعد ساتھ میں جو میرا وائف ہے اس کی تھوڑی طبیعت بھی, شی از لٹل بگ, اس کا بھی اسٹریس ٹیسس وغیرہ کیا ہے تو ٹھیک آیا ہے اس کا اسٹریس ٹیسس, لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ شی ہیز سم پرابلم وائل کلائمبنگ اسٹیئرز. تو یہ پرکار کا بھی کوشچنس مائنڈ میں آتی ہے, ہر ایک پرکار کا کوشچن مائنڈ میں آتی ہے, اور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوشچنس جو آتی ہے اس کا جواب ایک ہی حساب سے آ سکتی ہے کہ میک اے فل اسٹاپ. اور بابا از سیئنگ کہ یو ڈونٹ نو کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ اٹ, جسٹ فل اسٹاپ کر دیجیے آپ, اور جب یہ فل اسٹاپ کریں اور جسٹ بابا کا سوچو تو بابا رستہ دے جائے گا, آپ کو دے دے گا. وہی پڑھنے
ایسا ہے کہ ابھی آتم بھائی جی آ گئے ہیں, ان کا بھی کلاس ہے اور مجھے نیچے جانا ہے کیونکہ میرا صبح کا فلائٹ ہے ادے پور سے, تو اس لیے آپ سب کی چھٹی لے کر کے میں نیپال سیوا پر جا رہا ہوں 10 دن کے لیے. وہاں پر بہت سارے پروگرام رکھے ہوئے ہیں, تو کل سے لے کر 1 تاریخ تک میں نیپال سیوا پر ہوں, 1 کو واپس آ جاؤں گا. اوم شانتی.
بہت بہت دھنیواد راجو بھائی, آپ نے جو بھی ہمارے پرشاد کمار کی رکاوٹیں تھی, اٹکلیں تھی, آپ نے اس کو روڑا تھا, نکال دیا میرے خیال سے. ٹھیک ہے, آپ سیوا کے لیے جائیں, ہم سب کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں. آپ وہاں پر بھٹی کرائیں گے اور انیک آتماؤں کو بہت ساری دعائیں اکٹھی کر کے آئیں گے. ہماری ڈھیر ساری شبھ کامنائیں.